نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Don't be sad لا تحزن Day 26 وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے آج کل احساس ہو رہا ہے کہ کیسے ہم ہر ایک دن دوسرے دن اور اس کے بعد اگلے دن میں آ رہے ہیں اور ہر دن ہماری زندگی میں ایک دن کی کمی کرتا ہے تو آج ہم ہر روز کی طرح آج کے اس دن کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت میں سے اپنے لیے رہنمائی لیں گے کہ کیسے انسان اللہ کی کتاب کو جب سمجھ جاتا ہے تو ہر دکھ اور غم غم کے وقت اس کو کوئی نہ کوئی یاد آتا ہے آج کی ہماری آیت ہے سورۃ نمل آیت نمبر 70 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اور کہا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُمْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان کے حال پر غم نہ کرو وَلَا تَكُمْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ان کی چالوں سے جو وہ چل رہے ہیں فکر مند ہو پیچھے بھی سورۃ ہجر کی ایک آیت گزری یہاں پھر وہی انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ کے لیے ایک چیلنج تھی وہی جو آپ کے اپنے تھے وہی آپ کے دشمن بن گئے اور کس طریقے سے آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے لگے اللہ کے نبی ان کو ہدایت سے دور دیکھ کر کڑھتے تھے نہ صرف یہ تھے کہ وہ خود ہدایت کی شاہراہ سے اترے بلکہ دوسروں کو بھی اتارنے کا ذریعہ بن گئے ایک سچے داعی دین کو یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں ہوتی تو آپ کے دل میں جو گھٹن آتی تھی اور خاص طور پہ پھر جب انسان کسی بھی راستے سے الگ ہوتا ہے تو وہ اپنے الگ ہونے کی وجہ کچھ باتوں کے ذریعے ڈھونڈتا ہے تو وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشہور کی جاتی تھی اسی کو یہاں مکر کہا گیا آپ کے میرے لیے اس ساری بات میں جو عمل کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو ہمیشہ ایک مقصد کے تابع کیجیے لوگ آپ کے مقصد میں آپ کے ساتھ چلیں تو فبہا اور اگر وہ آپ کے راستے پہ نہیں چلتے اور بلکہ آپ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں جیسے کہ مکہ والوں نے راستوں میں لوگوں کو بٹھا بھی دیا فزیکلی اور حج اور عمرے کے لیے آنے والے لوگوں کو اپنے سے دور کرنے لگے تو پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیجئے کیونکہ جب داعی دین بہت تکلیف کھاتا ہے نا تو اس کی اپنی طبیعت پہ اس کا بوجھ آتا ہے اس کا وہ کام متاثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُنْ فِي دَيْكِنْ آپ کو بھی اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کرنا چاہیے پھر لوگ آپ کو اچھا کہیں تو بھی اچھا لوگ آپ کو برا کہیں تو بھی برا پچھلی نشست کے ٹاپکس دہرا لیتے ہیں نیک فال لیجیے کیا مطلب مطلب اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیے زندگی دھوپ چھاؤں ہے کبھی دھوپ میں ہیں تو تھوڑی دیر بعد چھاؤں آ جائے گی تو اچھی لگے گی بہت دیر چھاؤں میں چلے رہیں تو پھر دھوپ اچھی لگتی ہے اسی طرح اگر صرف زندگی میں خوشیاں ہی ہوتی اور غم کی کوئی چیز نہ ہوتی تو ہم بور ہو جاتے ہمیشہ صحت ہی ہوتی بیماری نہ آتی تو ہمیں صحت کی پھر قدر بھی نہ ہوتی اس لیے چلتے جائیے اس رستے میں اور اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتے رہیے پھر اس کے بعد اعتدال ہی میں راہ نجات ہے یعنی زندگی میں ہر معاملے میں بیلنس رکھیے آپ جتنا بیلنسڈ ہوں گے اتنے محفوظ ہوں گے ڈرائیور کو ہی ذہن میں لے آئیے بہت ہلکی گاڑی چلائے گا تو بھی بوریت ہوگی اور بہت تیز چلائے گا تو بھی اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا پھر اسی طرح انسان اپنی غالب صفات کے ساتھ سب سے ٹچی ٹاپک یہ تھا میرے لیے کل کا کہ لوگ آپ کے لیے اگر کچھ بری بات کہہ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ آپ کے لیے اچھی بات کہنے والے ضرور بھیجتا ہے اچھے لوگوں کو کچھ لوگوں نے وقتی طور پہ برا بھی کہا آج کسی کو بھی یاد نہیں اور برے لوگوں کے چاپلوس لوگوں نے قصیدے بھی پڑھے لیکن آج وہ بھی نہیں تو میرا اور آپ کا صرف وہ نام اینڈ پہ لوگوں کو یاد رہ جائے گا جو اصل میں میں ہوں اگر میں اچھی ہوں خیر ہے تو وقتی طور پہ کوئی سکینڈل آ جائے کوئی فتنہ آ جائے اور اللہ محفوظ رکھے لیکن اللہ تعالیٰ پھر उसको धूल की तरह उड़ा देते हैं। फिर इसी तरह आप इसी तरह पैदा होते हैं, यानी अल्लाह ने आपको उसी काम के लिए जो आपसे करवाना है उसके लिए पैदा किया गया। तो अपनी पहचानिए, खूबियाँ पहचानिए, मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, और फिर उसको करने में ज़िंदगी खपा दीजिए। फिर ज़हानत के लिए नेकी और पाकीज़गी भी दरकार है, यानी हर ज़हीन शख्स पाक नहीं होता, कुछ ईवल जीनियस भी होते हैं। और ऐसे ईवल जीनियस जैसे कि इब्लीस, जिसने सबसे ज़्यादा अक़ल का इस्तेमाल किया और वही अक़ल उसके लिए पकड़ का ज़रिया बन गई। तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि अक़ल भी वो जो हकीकत में इंसान को पाक रखे, अय्यारी में और मक्कारी में अगर अक़ल बदल जाए तो इंसान पाकी का रास्ता छोड़ देता है। फिर साहिबे जमाल बनिए, कायनात भी हसीन लगेगी, यानी आँखों में खूबसूरती भर लीजिए तो आपको कायनात की हर चीज़ खूबसूरत लगेगी। फिर दलील सुबह रोशन है, सितारों की तुनकता भी, जब रात गहरी होती है तो सितारे ज़्यादा दिखते हैं, अंधेरी रातों में सितारों की चमक बताती है कि इंसान दुखों और तकलीफ़ों में ज़्यादा निखर के सामने आते हैं, वो अपने टैलेंट को इस तरह से उभरता हुआ पाते हैं। आप पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक की बजाय ग्रे कर दीजिए तो बहुत चमकती हुई चीज़ भी मान पड़ जाती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने वजूद की भी अच्छी तरह से देख नहीं पाते जब तक ज़िंदगी में कोई गम, कोई तकलीफ़, दुख ना आ जाए। फिर इसी तरह बुग़्ज़ और हसद से बालातर हो जाइए, क्योंकि ये वो गैर फितरी चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी भर देती हैं, और इन चीज़ों में पढ़कर इंसान ना दूसरे से फ़ायदा उठाता है बल्कि जो उसकी खैर होती है उससे भी महरूम हो जाता है। फिर इल्म आसानी की चाबी है, इल्म से ज़िंदगी आसान होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इल्म लेने से ज़िंदगी मुश्किल होगी इसलिए मैं पढ़ती नहीं, तो हमने इस पर सिर हासिल बात की थी कि इल्म के बाद तो ज़िंदगी आसानियों में ढल गई। हमने तो बहुत सारे बोझ अपने ऊपर रस्मों के और बाप दादा के तरीक़ों के डाले हुए थे, और हदीस की रोशनी में जब कुरान खोला तो फिर समझ आया कि खूबसूरती तो ये है। इसी तरह यूँ नहीं तो यूँ, ज़िंदगी में हमेशा प्लान बी साथ रखिए। कभी ये ना हुआ तो ये कर लूँगी, ये ना पहन सकी तो फिर ये पहन लूँगी। ज़िंदगी के मामलों में भी इसी असूल को रखिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन बन जाए तो उस वक्त आप अपने होश न गुम कर दें। फिर इसी तरह सबसे ज़्यादा शरह सदर वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्यों ना हो, क्योंकि अलम नशरह लक सदरक का अल्लाह ने जो जुमला बोला वो अपने प्यारे नबी के लिए था। फिर तदरीज बरतें, ग्रेजुअलिटी, 80 की स्पीड पे अगर यू टर्न लेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी, इसीलिए इंसानों को भी तदरीजन कायल कीजिए। तबलीग का बड़ा खूबसूरत असूल है कि चीज़ों को हल्के हल्के लेकर चलिए। फिर कलील पर शुक्र नहीं करते तो कसीर पर कैसे करोगे, यानी आपको छोटी सी चीज़ मिली आपने उसका ही शुक्र नहीं किया, और शुक्र से मुराद है कि उसका हक अदा नहीं किया, तो जब बड़ी मिल जाएगी तो आप उसको संभाल भी नहीं सकेंगे। यही बात इधर बता दी। आज हम जिस टॉपिक से शुरू करेंगे वो है तीन बातें। वो कौन सी बातें हैं, आइए पढ़ते हैं और फिर इसमें से अपने लिए अमल की बात भी लेंगे। तीन बातें। एक दाना ने अपने ऑफिस पर तीन कीमती लोहे लगाए। लोहा क्या होता है? साइन, साइन बोर्ड जैसे होता है। पहले पर लिखा, आप इसको बंद कर लीजिए, दिन का ख्याल कीजिए, दिन का यानी दिन का ख्याल कीजिए, दिन का यानी आज की हदूद में रहिए। दूसरे पर लिखा था, सोचिए और शुक्र कीजिए, थिंक एंड बी थैंकफुल, यानी अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा कीजिए। तीसरे पर लिखा था, गुस्सा ना करें। ये तीन ऐसी नसीहतें हैं जो आपको सआदत का आसान तरीन और करीबी रास्ता दिखाती हैं। इन्हें अपने रोज़नामचे यानी डेली कैलेंडर में लिखिए और रोज़ाना इनका मुतालिया कीजिए। बात तो बहुत अच्छी कही जिसने भी कही, तो क्या किया, थोड़ा सा दोहराइए तीन बातों को। दानाई की तीन बातें, आज के दिन का ख्याल कीजिए, यानी अगर आपने आज के दिन का हक अदा ना किया तो कल का दिन आपको क्या देगा और आप उसको क्या देंगे। ज़िंदगी का एक असूल बनाइए, आज, अभी और नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। आज के दिन को जितना ज़्यादा पॉजिटिव यूज़ करेंगे, अल्लाह ताला उतने ही ज़्यादा आपको कल की नेमत देंगे। आप कभी किसी को कोई ऐसी चीज़ देंगे जो पहली उसने ज़ाया कर दी? ये तो अल्लाह की शान है जो हर रोज़ एक नया सूरज हमारे नसीब में होता है, और अक्सर हर दिन ही सुबह जब सूरज निकलते हुए दिखता है तो मैं यही कहती हूँ, अल्लाह आपने एक और मौका दे दिया। अल्लाह ताला आप अभी भी मायूस नहीं हैं, आपको अभी भी उम्मीद है कि मैं कुछ करूँगी। तो हर दिन को खुशी से वेलकम कीजिए और जाते लम्हों में मुहासबा कीजिए कि मैंने इसका हक अदा किया कि नहीं। फिर सोचिए और शुक्र कीजिए। आप बैठते सोचने देखिए लंबी लिस्ट होगी चीज़ों की, नेमतों की, अल्लाह के एहसानात की, जिसके ऊपर आपके दिल से शुक्र निकलेगा। फिर इसी तरह गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा हमारी अक़ल को मार देता है। सोचिए, ज़रा सा एक वक्फ़ा लें, खुलासा करें, क्या वाकई मैं अपनी ज़िंदगी से बेहतरीन फ़ायदा उठा रही हूँ? फिर ये बात सोचिए कि शिद्दत के साथ फराखी और उसर के साथ युसर की वाबस्तगी के इसरार यानी राज और लताइफ यानी लतीफ़ बातों में से ये है कि तकलीफ़ जब ज़्यादा और बेइंतहा हो जाए और बंदे को इस बात से मायूसी हो जाए कि मखलूकात इसकी तकलीफ़ दूर कर देंगी, तो इसका दिल अल्लाह वाहदहु ला शरीक से जुड़ेगा। यही अल्लाह पर तवक्कुल की हकीकत है। बात तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जब बीच के सब साबके लाके हट जाते हैं ना, तो तभी अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी ताकत का यकीन आता है। एक चीज़ ये भी है कि मोमिन को अगर कसरते दुआ के बाद फराखी ना मिलेगी, कबूलियत दुआ से मायूसी सी होने लगे, तो वह अपने आप को ही मलामत करेगा और कहेगा कि मेरा नफ्स ही ख़राब है, इसके सबब ये आफत है कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। अगर इसमें खैर होता तो ज़रूर दुआ कबूल होती। इसका नफ्स को मलामत करना अल्लाह को बहुत सी इताअत से ज़्यादा पसंद है। बहुत ही अहम बात है अगर आपने नोट की, यानी आप जितनी मर्ज़ी इताअत कर लीजिए वो अपनी जगह है, लेकिन अपने गुनाहों पे अपने नफ्स को मलामत करना अल्लाह को ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे बंदा अल्लाह के लिए इनकिसार व आजज़ी इख्तियार करता है और वो एतराफ़ करता है कि वो इसी तकलीफ़ का मुस्तहिक है और दुआ की अदम कबूलियत का सज़ावार है। तब फौरन अल्लाह इसकी फरियाद सुनता है और इसकी तकलीफ़ दूर फरमा देता है। अम्मे युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि अगर इसे बादशाह जान जाए तो वो हमसे इस पर तलवारों से जंग करें। मतलब ये कि हमारे अंदर सुकून है, हमारे बाहर खुशी है। आप देखिए कि बादशाहों के पास अमूमन ये दो चीज़ें कम ही देखी गईं। तो मतलब यह है कि बादशाह बन भी जाए तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास खुशी हो। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे दिल पर ऐसी सातें गुजरती हैं कि इस तरह के अहवाल से अहले जन्नत गुजरें तो मैं कहूँगा वो अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी में है। सुभान अल्लाह, यानी अहले जन्नत को जो कैफियत महसूस होगी ना, ये कहते हैं मुझे दुनिया में ही महसूस होती है। कभी सोचे, हाँ हमें ऐसे होता हैं, शिकवे हैं, गिले क्या थे? ये अपने वक्त के कोई करोड़पति लोग थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, बेहतरीन खाने खाते थे। नहीं, अंदर का सुकून, और ये वो खुशी है कि जिसको पाने के लिए इंसान सब कुछ देने को तैयार है। ऐ अल्लाह मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मुझसे ये खुशी ना छीनना। पूरी दुनिया एक पलड़े में और ये खुशी अपनी जगह, और इसको आप जितना ज़्यादा अल्लाह के लिए खालिस होते जाते हैं ना, आप दुनिया में महसूस करते हैं। कभी कभी तो अनजाने में आपके मुंह से ये निकलता है, अल्लाह और जन्नत में क्या होगा? फिर याद आता है, अल्लाह तेरा दीदार नहीं है इधर। तो अल्लाह ताला हमारी इबादत को, हमारी नमाजों को ज़िंदा कर दे, कि हम अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में नमाज और कुरान के ज़रिए करें। तो क्या हकीकत खुली कि तवक्कुल की हकीकत को पाने के दो आसान रास्ते। एक ये है कि मसाइब और मायूसी की इंतहा पर अल्लाह की तरफ रजू कीजिए, और दूसरी बात है कि मायूसी और दुख में अपने नफ्स को मलामत कीजिए। किसी का नहीं कुछ होता। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, ये मैं जालिम थी जो मेरे किसी गुनाह पे तूने ये तकलीफ़ दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोगो मुतमईन रहो। इत्मीनान कल्ब दिखाया जा रहा है इसमें। किताब का नाम है अलफर्ज बादश शिद्दा। फर्ज कहते हैं सहूलत को, खुल जाना, सुराख को कहते हैं वैसे, और शिद्दत के बाद यानी शिद्दत का खुल जाना, बीमारी का ख़त्म हो जाना, गुर्बत का ख़त्म हो जाना वगैरह। इसमें 30 से ज़्यादा चैप्टर्स यानी अबवाब में ये बताया गया है कि जब तकलीफ़ें और बहरान उरूज को पहुंच जाते हैं तो आसानी और फराही मिल जाती है। और ये अरबी की एक बहुत मारूफ कहावत भी है कि ज़ादाकल अमरु, जब मामला तंग होता है तो राहबत खुल जाता है। और ये कि बंदा जब ज़्यादा मुसीबत में डूबा होगा और जितने गमों अलम से दो चार होगा उतना ही करीब तर आसानी सहूलत और खुलासी होगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि एंड पे बीमारी भी साथ छोड़ देती है, एंड पे बीमारी भी साथ छोड़ देती है से क्या मुराद कि आखिर में मौत के वक्त इंसान सुकून और ख़ुशी के साथ इन सारी चीज़ों के साथ चल पड़ता है। तो बात यह है कि दुनिया की हर चीज़ चूँकि गैर बाकी है यानी फ़ानी है, तो यहाँ के गम यहाँ की बीमारियाँ भी फ़ानी हैं। अल-तनूखी ने अपनी दिलचस्प और तवील किताब में परेशान हालों और मुसीबत जदों के किस्से बयान किए जिनमें बास कैद हुए थे, बास को माजूल यानी वतन से निकाला गया या उनकी ओहदे से हटा दिया गया और जिला वतन कर दिया गया, बास को कोड़े लगाए गए थे, बास मुफलिसों का लाश बना दिए गए थे। चंद ही दिन गुजरे थे कि ऐन यास यानी नाउमीदी और गफलत के वक्त नुसरत और इमदाद के फरिश्ते नाजिल हो गए, अल्लाह की मदद आ गई। तनूखी आफत के मारों और मुसीबत जदों से कहते थे, यानी राइटर कहते थे ऐसे लोगों को जो उनकी बुक पढ़ते थे, मुतमईन रहो, इस रास्ते में तुमसे पहले भी लोग गुजरे हैं। तभी तो शायर ने कहा कि अभी इस राह से कोई गया है, कह देती है शोखी नक्शे पाकी, यानी कोई आप पे अकेली मुसीबत नहीं आई, इससे पहले भी लोगों पे गुजरी। और अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं, हम तुमको किसी चीज़ में आजमाएंगे, हमने तुमसे पहले के लोगों को भी आजमाया है। ये अदल का तकाजा है कि अल्लाह बंदों का इम्तिहान ले, इन्हें शिद्दत और आसानी में आजमाए, इनको दिन और रात की तरह मुख्तलिफ अहवाल से गुजारे। लिहाजा एराज नाराज़गी और एतराज़ क्यों, अगर हमने इन पर फ़र्ज़ कर दिया होता कि अपने आप को कत्ल कर दिया करो या अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें से चंद ही लोग ऐसा करते। यानी हकीकत है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं लेकिन वलौ कतबना अलैहिमुल क़िताल अब इख़रिजू मिन दियारिकुम, लोग अपने घरों से निकलना और ख़ुद को मारना ये तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ बातों की बात होती है। यानी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल पा रहे तो क्या कत्ल होने के लिए निकलेंगे और क्या घरों को छोड़ेंगे। और शायर कहता है कि अगर तुम मुझसे ये कहते कि अंगारों पर चलो तो मैं बसरो चश्म कहता कि अंगारों की गर्मी तुम्हारी आंखों की वजह से सोना बन जाती है। ये सिर्फ शायरी की बातें हैं, कोई नहीं, जब अंगारों पर चलेगा जान निकल जाएगी, चीखेगा सारी मोहब्बत भाग जाएगी। तो मतलब क्या है कि बातों में कहना बहुत आसान है। तो क्या सीखा, दोहराइए, लोगों मुतमईन रहो। आप देखिए कि वो एक शेर है ना कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मतलब फिर मुश्किलों को सहने की आदत हो जाती है, जब कभी मुश्किल आए तो क्या करें, चार चीज़ें, नंबर एक अल्लाह पर भरोसा रखें, फिर जिक्रे इलाही और दुआ की कसरत कीजिए, मुसीबतों के मुकाबिल सब्र कीजिए और आसानी की नवीद पाइए। अल्लाह ताला किसी पे इतनी डालता भी नहीं जो इंसान बर्दाश्त ना करे। अमल के क्या नुकात हैं, मुतमईन रहना है, मुश्किल के बाद आसानी होती है इसका यकीन करना है, शुक्र करके नेमतों को बढ़ाना है, इल्म और शरह सदर से ज़िंदगी को पुरसकून बनाना है, कायनात पे गौर व फिक्र करना है और तदरीज को अपनाना है। आप देखिए अगर हम कायनात को अपना उस्ताद बना लें तो हमारे बहुत से गम तकलीफ़ें वैसे ही दूर हो जाएं। फिर अगली चीज़, खैर के काम बुरे नताइज से बचाते हैं। वैसे इस वक्त आप खैर का काम कर रही हैं ना, आपको क्या पता किस बुरी चीज़ से अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है। आप यहाँ से उठकर रोड पे जाती, चलो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे हादसा हो जाता, पर्स चोरी हो जाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती। तो ज़िंदगी में याद रखिए, जब हम खैर का कोई काम कर रहे होते हैं ना, कुछ भी ना मिले, कोई नतीजा ना निकले, लेकिन आप देखेंगे कि आप बहुत सारी गलत चीज़ों से फिर भी बचेंगे। बेहतरीन कलेमात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये कौल भी है कि मारूफ के काम बुरे अंजाम से बचा लेते हैं अक़ल और नक़ल। अक़ल किसको कहते हैं, अक़ल विजडम, और नकल कहते हैं किताबों में जो बात नकल दर नकल होती गई। यानी वो चीज़ जो किताबों में मिलती है वो इस बात की तस्दीक करती हैं, और अल्लाह ने तो हज़रत यूनुस के लिए सच कहा ना, अगर यूनुस तस्बीह गुजारों में ना होते तो मछली के पेट में क़यामत तक पड़े रहते। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी से फरमाती हैं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, कल्ला वल्लाही, अल्लाह आपको रुसवा न करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते, लोगों का बोझ उठा लेते, गरीब को देते और दुनियावी आफात में मदद करते। ये कब हुआ था दिलासा? जब पहली वही आई थी कि आपको कोई क्यों कुछ कहेगा, आप तो अल्लाह के इतने चुने हुए हैं। यहाँ देखिए कि कैसे उन्होंने मारूफ के कामों और महासिन यानी खूबियों से अच्छे इंजाम पर दलील ली, यानी अच्छी इब्तदा से अच्छे नतीजे तक पहुँच गई। ये जुमला लिख लीजिए, बीज अच्छा होगा ना, दरख्त भी अच्छा होगा, फल भी अच्छा होगा। बुरा बीज डाल दीजिए, कभी भी खैर नहीं आएगी, बस नियत बीज है। अच्छी नियत से काम शुरू कीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको क्या देते हैं। असाबी शख्स है, उनकी एक किताब है अल वुज़रा, इब्नुल जौज़ी की किताब है अल मुंतज़िम, और तनुखी की किताब है अल फर्द जुबादुश शिद्दा में एक किस्सा है, यानी इन तीनों किताबों में ये किस्सा मौजूद है, जिसका खुलासा ये है, वज़ीर इब्नुल फरात अबू जाफर इब्ने बस्ताम के पीछे पड़ा रहता और उसे अजियत देने के दर पर रहता था। अबू जाफर ने इसके हाथों बहुत सी तकलीफ़ें उठाईं। अबू जाफर की माँ ने बचपन से इसे इसका आदी बना दिया था कि इसके तकिए के नीचे रोज़ एक रोटी रखती और दूसरे दिन इसे सदका कर देती। जब इब्नुल फरात की अजियतों पर एक मुद्दत गुजर गई तो इब्नुल फरात इससे बोला, क्या तुम्हारी माँ की रोटी अब भी मिलती है? अबू जाफर ने कहा, नहीं। इब्नुल फरात ने कहा, वो ज़रूरी है, उसे सदका करने दो। अबू जाफर ने इसका तذکرہ करते हुए कहा, वह ख़वातीन की नेकियों की कबील से है। इब्नुल फरात बोला, नहीं, मैं कल रात तुम्हें बिल्कुल ख़त्म कर देने की तदबीर कर रहा था, नींद में ख्वाब देखा कि मैं नंगी तलवार लिए तुम्हें कत्ल करने जा रहा हूँ, तो तुम्हारी माँ अपने हाथ में रोटी लिए इसे ढाल बनाकर सामने आ गई, मैं तुम्हारे करीब पहुँचा ही था कि आँख खुल गई। अबू जाफर ने दोनों के बीच दूरी पर अफसोस जाहिर किया और वज़ीर का फरमा बरदार हो गया, इसे राज़ी किया, इसकी इसलाह की कोशिश की, हत्ता के दोनों दोस्त हो गए। इब्नुल फरात ने कहा, बखुदा अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचाऊँगा, यानी माँ की रोटियों के सदक़े ने बच्चे की जान बचा ली। तो जब भी कोई खैर का काम करें तो कहा करें, अल्लाह इसकी वजह से मेरे से कोई बला टाल दे, कोई बुरी चीज़ मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। पता नहीं हमने भी कोरोना का शिकार होना था, तो हमने देखा कि किस तरीके से मुश्किलात में इंसान की कोई ना कोई नेकी काम आ जाती है। हज़रत अबू बकर का कॉल मारूफ के काम बुरे अंजाम से बचा लेते हैं। फिर इसी तरह हज़रत खदीजा की तसल्ली कितनी खूबसूरत थी कि आप चूँकि लोगों का बोझ उठाते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, सिला रहमी करते हैं, गरीबों को देते हैं, तो अल्लाह ताला आपको मुश्किलात में नहीं डालेगा। फिर इसी तरह गार में फंसे हुए तीन लोगों का किस्सा आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, कि जिन्होंने दुख के वक्त पे अपनी कोई नेकी याद की और अल्लाह ताला ने उनकी उस नेकी को ही उनके लिए निजात का ज़रिया बना लिया। फिर इसी तरह आप हज़रत मूसा और खिज़र का किस्सा कुरान पाक में पढ़ते हैं, हर जुमे कोई पढ़ते होंगे अल्लाह की तौफीक से, तो उसमें हम देखते हैं कि नेक माँ बाप का बच्चा अल्लाह ने माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी उस बच्चे के माल की हिफाजत की और यतीमों के माल को अल्लाह काफ़ी हो गया, यानी वकाना अबू हुमा सालेहा। इस पे बहुत डिटेल्स मिलती हैं किताबों में कि कैसे माँ बाप की नेकियाँ उनके दुनिया से जाने के बाद भी बच्चों के काम आती हैं। तो अपने लिए नेकियाँ किया करें। बड़े बड़े असलाफ के किस्से एक लेक्चर में सुनाए थे कि कैसे वो कोई नफिल पढ़ते तो कहते थे, तेरे लिए बेटा ये नेकी मैं तेरे लिए कर रहा हूँ कि कल तुझे कोई मुश्किल ना हो। तो अगर आज माँ बाप सारे ही ये सोचने लग जाएं तो यकीन कीजिए कि जैसे उनके लिए विरसे में माल छोड़ के जा रहे हैं ना, इस तरह उनके लिए नेकियाँ भी छोड़ के जाएं। कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर छोड़ेंगे कि जिससे फिर वो उस तकलीफ़ से, या वो जो बच्चों को हमारे बाद तकलीफ़ें आने वाली होती हैं, अल्लाह ताला उससे उनको बचाएगा। फिर इसके बाद आगे है, तफरीक़ खातिर से ज़िंदगानी का सफ़र आसान हो जाता है, यानी सैर पे जाइए, तफरीक कीजिए। मालूम है कि शरीयत में आसानी और वसअत है, जिससे बंदा इबादत, कारगुजारी, अमल सालेह करते रहने के लायक हो जाता है। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम हंसे, हम बोले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते थे और अल्लाह ही हंसाने और रुलाने वाला। अल्लज़ी अदहका वअबका, सूरत नजम में आती है ये बात। आप मज़ा फरमाते अगरचे इसमें सच बात ही कहते। आपने हज़रत आयशा से दौड़ में मुकाबला किया तस्कीर में, यानी जब दूसरों को नसीहत करते थे, ज़िक्र की को महफिल, जिसको आप आज रिमाइंडर्स कह सकते हैं, तो बड़ा मुख्तसर सा देते ताकि सहाबा कराम उकता ना जाएं। आप तामुक, तकल्लुफ़ और तशद्दुद से मना फरमाते। तामुक है अमीक से, गहराई, और तकल्लुफ़ है तकल्लुफ़, वो तो हम सबको ही पता है, तकल्लुफ़ ना कीजिए। और तशद्दुद यानी बहुत ही शिद्दत बरतना, यानी आपके मिजाज में ये आर्टिफिशियलनेस नहीं थी। और इसी तरह से आप क्या कहते थे कि जो दीन में बेदा सख्ती बरतेगा वो मगलूब होगा। मतलब क्या भला, यानी दीन की सख्ती पे वो ख़ुद भी ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकेगा और बिलाखिर जो बात लोगों को कह रहा था उस बात पे ख़ुद भी अमल नहीं कर सकेगा। हदीस में है कि दीन मज़बूत है, इसमें नरमी के साथ दाखिल हो जाओ। इबादत गुजार में शिद्दत, तकलीफ़ और जोश पैदा हो जाता है, तकल्लुफ़ करने वाला टूट ही जाता है, क्योंकि वो फौरी हालात पर नज़र रखता है। वह तवील मुद्दत और दिल की अफसुर्दगी को भूल जाता है, वरना अक्लमंद काम की एक हद रखता है। जब ज़्यादा जोश पैदा होगा तो इससे आगे निकल जाएगा, और जोश ना होगा तो अपनी असल पर बाकी रहेगा। इसीलिए याद रखिए कि जज्बाती इंसानों से बहुत डरना चाहिए। वह एक हवा के खुलारे की तरह आते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, वो एक लहर और एक मौज की तरह आते हैं फिर गायब ही हो जाते हैं। तो जोशीले लोग जितना गरजते हैं वक्त आने पे वो उतना बरसते नहीं हैं। बात सहाबा से ये मनकूल है कि नफूस में तवज्जो और बेहजूरी दोनों होती है। तवज्जो के वक्त को गनीमत जानो और बेहजूरी में इसको छोड़ दो। यानी कभी कभी हमारा नफ्स बहुत मतवज होता है, और आप ख़ुद भी देखेंगे कभी आप इतने फोकस्ड होते हैं नमाज में, क्लास में, कुरान के पढ़ने पढ़ाने में, कि आपको वाकई मज़ा आ जाता है, और कभी तबीयत ही नहीं सहरती। नमाज में भी ध्यान इधर से उधर जाता है, तो कभी भी ऐसी एब्जॉर्प्शन की कैफियत आए बस उसको पकड़ के कैद कर लीजिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मफहूम यही है कि बहुत सो को देखा कि जोश पैदा हुआ तो नवाफिल की कसरत शुरू कर दी, गलुफ का शिकार हो गए, सुस्ती छाई तो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। दीन असलन खुशी से हम किनार करने के लिए, ये लिख लें। कोई भी जो नया नया शख्स कुरान कोर्स ज्वाइन कर चुका है ना, वो कोई पूछे ना क्या कर रहे हो, कहना खुशी, खुशी लेने के लिए कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि दीन आपके अंदर खुशी भर देता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ताहा की बिल्कुल इब्तदाई आयते हैं कि मानजलना हाज़ल कुराना लितश्का, हमने आपके ऊपर ये कुरान इसलिए नहीं उतारा कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। अल्लाह ताला ने इन लोगों की मलामत की है जिन्होंने तकल्लुफ़ से ज़्यादा अपने को मुकल्लफ़ कर लिया, फिर हकीकत की ज़मीन पर पसपा हो गए, जिसका अपने आप को मुकल्लफ़ बना डाला था इसे तोड़ बैठे। क्या पता चला कि कोशिश जितनी करेंगे अल्लाह आपके लिए उतनी आसानियाँ कर देगा। वो रहबानियत जो उन्होंने खुद ईजाद की, हमने इनके ऊपर फ़र्ज़ न की थी, वो अल्लाह की खुशनुदी चाहते थे लेकिन इस रहबानियत का हक़ भी अदा न कर सके। सूरत हदीद की आयत 27 है। यानी रहबानियत भी असल में ख़ुद पर शिद्दत बरतना है, जो कि पसंदीदा नहीं। दूसरे मज़ाहिब पर इस्लाम का ये इम्तियाज़ है कि वह दीन फितरत है, वसतियत वाला है, यानी मिडल है, दरमियाना है। वो रूह और जिस्म, दुनिया व आखरत सब के लिए और आसान है। यानी ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं कि बड़े नेक लोग, बहुत ज़्यादा तकवा वाले, ये सब के लिए है। अल्लाह ने सबको जन्नत देनी है, इसलिए दीन बहुत सादा है और वही है सीधा रास्ता। अबू सईद खुदरी से एक रिवायत है, एक अराबी अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? कहा, वो मोमिन जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और जान से जिहाद करता है। फिर वो आदमी एक गोशे में बैठकर अल्लाह की इबादत में लग जाता है। यानी क्या पता चला, जान और माल से जिहाद करना बहुत सारी इबादत और बहुत सारे नवाफिल पढ़ने से भी अफसल है। एक रिवायत में यूँ है कि वो अल्लाह से डरता है और लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और अबू सईद से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जल्द ही वो ज़माना आएगा कि मुसलमानों का सबसे अच्छा माल वो बकरियों का रेवड़ होगा, जिसे वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश की जगहों में चराएगा और फितनों से अपने दीन की खातिर दूर भाग जाएगा। यानी बहुत इन नौके नहीं रह सकते आप दुनिया में, कंधे से कंधा आप नहीं मिला सकते, शोल्डर टू शोल्डर नहीं होंगे, बस आपको थोड़ा बचते बचाते ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है ताकि बहुत सारे गुनाहों और फितनों से बचें। हज़रत उमर फरमाते हैं, कभी कभी तन्हा भी रहो। इसी बारे में हज़रत जुनैद रहमहुल्लाह ने क्या खूब कहा कि अज़लत की तकलीफ़ जलबत की मदारत से आसान है। अज़लत क्या होती है? तन्हाई, बहुत अकेले होना, सबको छोड़कर अलग। अज़ल का लफ्ज़ी माने होता है छोड़ना, अलग हो जाना। जलबत है महफिल, जलवे जहाँ होते हैं बड़े, यानी आप महफिल में है, पार्टी में है, खतर है, मदारत है, आपको अच्छी तो ये लगती है, लेकिन अकेले घर में बैठे इजी इजी गोइंग कपड़े पहने हुए हैं, कोई तकल्लुफ़ नहीं, थकन नहीं हो रही, तो वो ज़्यादा मज़े की चीज़ है। ख़त्ताबी कहते हैं, अगर उज़लत से सिर्फ इतना ही फ़ायदा हो जाए कि गीबत से और इस मुनकर को देखने से निजात मिल जाए जिसको ताकत से दूर नहीं कर सकता, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? यानी महफिलों में गीबतें होती हैं, दूसरों की बुराइयाँ होती हैं, तो अकेले बैठे होंगे तो कम से कम इससे तो जान छूट जाएगी। कभी कभी महफिलों में गलत चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, आंख उठ जाती है, तो आप उससे भी बचेंगे। हाकिम की रिवायत है अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से, दोनों में ये बात है कि तन्हाई बुरे साथी से बेहतर है। लेकिन तन्हाई किसकी बेहतर होगी? जो डिप्रेशन में नहीं होगा, जिसके बारे में वो कहते हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो तन्हाई भी उसी वक्त अच्छी लगती है जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हो, मज़बूती हो, आप अल्लाह ताला के कुर्ब को पा सकें, उसमें आपके दिल में बेहतरियाँ भी हों और आप इंजॉय करें, आपकी ज़िंदगी वाकई ऐसी हो कि आप उसके अंदर खुशी महसूस करें, फिर तन्हाई मज़े की लगती है। वरना याद रखिए, जो अंदर से खोखले हैं ना, उनके लिए तन्हाई तो काबिले बर्दाश्त ही नहीं, हर वक्त महफिलों को ढूंढते रहते हैं। ख़त्ताबी ने किताब अल अज़ला में लिखा कि उजलत और इख्तलात के जैसे मुतल्लिकात होंगे, वैसे ही इनमें इख्तलाफ होगा। जो दलीलें इज्तमा पर उभरती हैं, इनका महल यह है कि वह आइमा और उमूर की इताअत से मुतल्लिक हैं। जो इनफरादियत की दलीलें हैं, इन्हें बरक्स हालत पर महमूल किया जाएगा। और जिस्मानी इफ्तराक व इज्तमा का मसला यह है कि जो अपनी मईशत और दीन की हिफाजत पर इक्तफा करे, तो इसके लिए यही मुनासिब है कि लोगों के इख्तलात से परहेज़ करें, बशर्ते कि जमात, इस्लाम और इसके जवाब और आदत मरीज़ और जनाजा के साथ चलने वगैरह के मुसलमानों के जो हकूक़ हैं इनको पूरा करें। यानी लोगों से उस वक्त मिले जब वाकई उनका कोई हक़ हो, यानी बीमार है तो उसकी आदत कर ले, कोई फौत हो गया तो उसका जनाजा पढ़ने निकल जाए। मतलूब जो है वो क्या है सोचिए। बुरी सोहबत से बचना। महफिलें बहुत अच्छी हैं अगर वहाँ अच्छे काम हों, लेकिन महफिलों में अमूमन अच्छे काम से ज़्यादा और या उनके साथ कुछ बुरे काम भी होते हैं, तो बुरी सोहबत से परहेज़ करना है, क्योंकि इसमें तशवीश खातिर और वक्त का ज़ियाँ है। यानी खाम खा बंदा बोझल हो जाता है और इसकी सुन उसकी सुन, जहन के अंदर फोकस नहीं रहता और वक्त भी ज़ाया होता है। लोगों से इख्तलात यानी मिक्सिंग को ऐसा समझा जाएगा जैसे दिन रात का खाना, लिहाजा बकदर ज़रूरत पर ही इक्तफा किया जाए, क्योंकि जिस्मों जान के लिए ज़्यादा मुफीद होगा।